ओम शांति। आज का विषय है परचिंतन का कीर्तन। और कीर्तन शब्द तुम सुनते आए हैं और वो द्वापर से कीर्तन होता ही आया है। भगवान का गुणगान गाना, भगवान की महिमा गाना, और उससे कईयों ने बहुत प्राप्तियां की है। तो कीर्तन तो बहुत अच्छा है। कहते हैं कि कीर्तन करना मना सुनना, जो कीर्तन करने वाले हैं और जिसको भी सुनाते हैं उसका भी उद्धार हो जाता है, और जो सुनाता है उसका भी उद्धार हो जाता है, वही कीर्तन है। कहते कलयुग है ना, वो दोषों का भंडार है। हम इतना दोष इतना करते करते आए हैं यहाँ, तो इतना बाबा कहते हैं कि हमारे पर कितने जन्मों का बोझ है, 63 जन्मों का पाप कर्मों का बोझ है। उसको खत्म करने के लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कितना बोझ है, उसके लिए कीर्तन रात दिन जरूरी है। लेकिन द्वापर से एक बात और भी आई है, कीर्तन के साथ साथ दिखा है हमने कि बहुत कीर्तन करते हैं, उसके साथ साथ एक और भी रस है जिसका परचिंतन का रस कहते हैं, वो भी करते आए हैं, वो भी करते आए हैं, तो हमारा पाप कभी भी नाश होता ही नहीं है। कहते हैं कि कलयुग में प्रभु की बहुत ही गुहार करते हैं, बहुत याद करते हैं, तो वो जो कीर्तन करते हैं, उनके नाम की महिमा करते हैं, उससे हम दोष मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कलयुग में भक्ति में या तो शास्त्र में लिखा हुआ है। यहाँ हम आज बात करेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कलयुग में, संगम युग में, जो किसी का भी परचिंतन ना करता हो। बाबा ने तो उसकी बहुत गुह्य बातें बताई है, लेकिन हम इतनी गुह्य बातें नहीं बताएंगे, हम प्रैक्टिकल बातें बताएंगे। प्रैक्टिकल बातें माना हम जो व्यवहार में करते हैं उसकी बातें बताएंगे। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका स्वभाव है कि कुछ न कुछ बातें किसी अन्य तक पहुंचाना, क्योंकि हम क्या करते हैं, चलते चलते दूसरे के बारे में हम कोई धारणा ही बना लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं। और ये कीर्तन ऐसा है जो बहुत रसदायक होता है, उसमें कितने घंटे जाते हैं, और वो जो बातें होती है वो याद भी रहती है। ज्ञान की बातें भूल भी जाए, लेकिन वो कीर्तन ऐसा है वो याद रहता है। और याद रहता इतना ही नहीं है, लेकिन हम जब करते हैं, किसी ने कुछ भी सुनाते हैं, कोई सुनाते हैं, तो हम इतना अच्छी रीति से सुनते हैं और घड़ी दो घड़ी भी नहीं रुकते हैं, और 50 की 100 बातें दूसरे को करने लग जाते हैं। क्योंकि मानव का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी चीज, और वो भी ऐसे रस, हम दूसरों तक पहुंचा देते हैं। और कोई भी कुछ बात करते हैं, किसी की परचिंतन करते हैं, हमारे को कोई नेगेटिव बात करते हैं, तो कभी हम उसके लिए ये नहीं कहते हैं कि इसका प्रमाण क्या है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसका प्रमाण कभी नहीं मांगा है हमने, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन किसी कोई की प्रशंसा करता है, कोई कहता है व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो हम 1000 प्रमाण मांगेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, और उसमें खोज निकालेंगे कि इसने हमारे साथ ऐसा किया था, हमारे साथ ऐसा किया था, बोलेंगे नहीं, लेकिन उस बात को लेकर के उसकी इतनी कमियां ढूंढेंगे कि हम बेहतर साबित कर देंगे कि नहीं व्यक्ति ठीक है ही नहीं। वो मतलब कि एक रस होता है, और उस रस को कहाँ तक पहुंचाता है, एक हिंसा की तरह पहुंचाता है। क्योंकि व्यक्ति अगर किसी को मारता है, छुरा लगाता है, तो अदालत में जाते हैं और उसका गुनाह बन जाता है, हिंसा का नाम होता है। लेकिन ये हिंसा ऐसी अहिंसा के नाम पे हिंसा है, बहुत बड़ी हिंसा है। जिस व्यक्ति को हम ऐसे परचिंतन करते हैं, उसको हम चाहते हैं कि उसको गिरा दे, लेकिन अगर व्यक्ति का मनोबल बहुत ही बड़ा है, अगर व्यक्ति बहुत मजबूत है, तो वो गिरता नहीं है, लेकिन उसका चिंतन करने वाले जरूर गिर जाता है। तो ये रस ऐसा है कि आपने देखा होगा कि पेपर में भी होता है, समाचार में अगर अच्छी अच्छी बातें होती है, तो कोई क्या कहता है, आज तो समाचार कुछ था ही नहीं, क्योंकि हिंसा होती है, किसी के पर कोई गुनाह होता है, दो व्यक्ति लड़के किसी को मारते हैं, ऐसी हिंसा का पूरा पेपर होगा तो कहेंगे आज तो मजेदार पेपर, बहुत अच्छा। लेकिन कई बार ऐसी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें होती है तो उसमें उनको मजा नहीं आती है। आपने देखा होगा हमारा जो मीडिया है वो जो बातें आती है वो ज्यादा पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी मजेदार बातें उनको नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द्वापर से हमने ये चिंतन शुरू किया है। द्वापर से शास्त्रों में भी हमने कई बातें सुनी है कि ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको मतलब कि हमारा जीवन में लोगों के जीवन भी ऐसा हो गया है। और किसी की आलोचना करते हैं तो देखा है कि आलोचना करते करते पॉजिटिव बातें करते हैं, हम पॉजिटिव बातें करते करते हम नेगेटिव तक कहाँ पहुंच जाते हैं। गॉसिप जिसको कहते हैं, जिसके हम इतनी बातें करते हैं और व्यक्ति की ऐसी ऐसी बातें, उस बातें उस व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की, तीसरे व्यक्ति की, ऐसे हम इसमें बहुत ही गुह्यता से चले जाते हैं। उसमें हमारा टाइम कितना जाता है, हमारा टाइम वेस्ट जाता है, हम संगम को भी भूल जाते हैं उस समय तो, क्योंकि हमारी आदत कितने समय से है, कितने समय से, कलयुग में तो खास एक जन्म में तो बहुत ही हो गई है, इसलिए बहुत ही इसमें हमको बहुत रस पड़ता है। कोई कहते हैं कि बाजार में जाते हैं, अगर उसकी माँ की दवाई लेने जाते हैं लेकिन दो रास्ते में झगड़े कर रहे हैं तो कहते हैं माँ की दवाई तो बाद में आएगी, लेकिन उसमें रिजल्ट क्या आता है, और दोनों ही अगर लड़ते लड़ते कोई छुड़ा लेते हैं और चले जाते, बोले मजा नहीं आई। अगर एक किसी को अगर मारते हैं, अगर किसी को बहुत ही हो जाता है तो मजा आती है उसमें, तो ये हमारा बड़ा स्वभाव बन गया है ऐसा। कहते रामायण में आता है कि परचिंतन समान कोई अध्ययन पाप नहीं है, और वैज्ञानिक लोग कहते हैं LDL, ये तो हमको पता नहीं, ये डॉक्टर लोगों को पता होगा, LDL जहर बन जाता है जब किसी की ईर्ष्या और परचिंतन करने से आपके शरीर में, शरीर की ग्रंथियों से हानिकारक रस द्रवित होता है, और वो जो द्रवित होता है कोई भी दवाइयों से ठीक नहीं होता है, लेकिन एक प्रभु चिंतन एक ऐसी दवाई है, उससे ही उस व्यक्ति में चमक फिर से आ सकती है। फिर बताया है कि कोई किसी का परचिंतन करते हैं तो आपके हमारे जो एकदम आंखें खुल जाती है ना, कान भी खुल जाते हैं, प्राण एकदम खुल जाते हैं, और इतना फुल अटेंशन होता है। और किसी के भी बारे में जब परचिंतन होता है तो राजी हो जाते हैं, और परचिंतन होता है ना दो तीन चार के बीच में होता है, अगर इतने सारे लोगों को कहे किसी की ऐसे नेगेटिव बात सुनाएंगे कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि एक बार है ना उषा बेन ने हमको SML का क्लास में एक बात बताई थी कि परचिंतन तो ऐसा है लेकिन वो दो तीन के बीच में होता है या चार पांच के बीच में होता है, कोई ऐसी बातें घटना घट जाती है तो पूरा ग्रुप होता है, इसका ग्रुप बन जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी साजिश से रचते हैं, उसके लिए बड़ी बातें करते हैं, और वो सारे जहान में ब्राह्मण संसार में तो ऐसा वो करते हैं कि मतलब ये व्यक्ति का जान निकल जाए, इतनी मतलब की बातें फैला देते हैं। लेकिन जब इस व्यक्ति के, और हमने ये भी देखा है उसके पीछे इतनी बातें होती है वो व्यक्ति तक पहुंचती नहीं है, जब बहुत सारी बातें उसके सामने आती तभी उसको मालूम पड़ता है कि इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन इतनी सारी बातें इतने सारे लोग करते हैं। हम जब टेलीफोन एक्सचेंज में थी ना तो एक बात हमको याद आती है कि एक फोन था ना उसमें इंटरनेशनल नेशनल सब होता था, चार फोन थे उसमें से सभी बहुत बातें करते थे लोग, कोई किसी को बोलते नहीं थे कि हम इतनी बातें करते हैं, है ना। तो बहुत बिल आ गया, एक बार बहुत बिल आ गया था तो हमारा असिस्टेंट इंजीनियर ने पूछा इतना सारा बिल कैसे आया, तो कोई कुछ बोलता नहीं था कि अरे कैसे आया ये बिल, क्योंकि सब करते थे, जो भी आते थे सब करते थे, इंटरनेशनल नेशनल बातें बहुत करते थे। लेकिन जब ही वो मीटर रीडिंग देखा तो बहुत बिल आ गया, तो उसको चार्जशीट मिली थी असिस्टेंट इंजीनियर का, तो उसका जवाब देना था, तो उस समय हम सुपरवाइजरिंग में थी, हम भी बातें करते थे, तो हम क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल कॉल का मैसेज देना था तो हम भी करते थे, तो हमने बोला सर मैं करती हूँ यहाँ से, तो आप देखो इसमें नेशनल इंटरनेशनल, क्योंकि मैं तो इतना नहीं करती, रोज एक दो फोन करती हूँ इंटरनेशनल, तो चेक करो। तो सर ने चेक किया तो उसको मालूम पड़ गया। तो उन्होंने, मैंने बोला सारे थे सारे लोग, मैं भी, और सारे थे सारे लोग यहाँ से फोन करते, चार फोन से। तो फिर नीचे जाकर के उसने स्टॉप करा दिया। तो कहने का मतलब कि यहाँ भी ऐसा है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात होती है उस तक पहुँचती नहीं है, तो उसको मालूम नहीं पड़ता कि भाई मेरे में क्या है। या तो कोई भी बात हम जांच कर सके, कोई सामने बोले कि भाई आप ऐसे हो, तो हम जांच कर सकते हैं, लेकिन पीछे पीछे इतनी बातें बताते हैं जो हम जांच नहीं कर सकते। कोई कोई बात अगर हमारे में कमी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कमी को 100 गुना बढ़ा दे करके करना हो तो ठीक नहीं है। अगर कोई कमी है तो सामने बोले भाई आप में एक कमी है, तो हम अपने को देख सकते हैं। अगर कमी नहीं है तो उसको फुल स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि बोलने वाले को तो ताला नहीं होता है जबान को, तो उसको हम बंद कर सके, और रस्सी ऐसा है बंद नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि परचिंतन तो एक ऐसी बीमारी है जिससे मनुष्य अगर फंस जाता है, और हमने देखा है कि जो घर ग्रस्त में रहते हैं वो अपने घर की जो भी सब्जियां हैं वो भर जल जाए, लेकिन बाजू में क्या होता है देखने जरूर जाएंगे, है ना माता जी? सच बात है ना, क्योंकि वो ऐसा होता है, रस ऐसा होता है, घर में कुछ भी हो जाए लेकिन वो रस ऐसा खींचता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि हम वो जो करते हैं हमारा समय कितना वैल्यूबल खत्म हो जाता है। यहाँ ब्राह्मण संसार में भी हमने देखा है कि कोई ऐसी बातें होती है सारे दिन उसमें लगे रहते हैं, लगे ही रहते हैं, ये क्या हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ क्या होता है। अगर कोई यहाँ मकान भी उसका बनता होता है या उसकी कोई रिपेयरिंग भी होती है तो सभी इंजीनियर बन करके उसकी बातें करेंगे, उसके पीछे इतनी बातें करेंगे, देखो इसने ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, तो बहुत परचिंतन होता है। कहते हैं कि ये व्यक्ति परचिंतन कौन कर सकता है, जिसको एक तो किसी के प्रति है ना ईर्ष्या है, और किसी के कंपैरिजन कर नहीं सकता है, उसके आगे जा नहीं सकता है, जा नहीं सकता है तो क्या करता है, उसको नीचे गिराने के लिए उसकी ऐसी बातें करता है। और वो व्यक्ति जो जिसकी बातें करता है उसको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है, लेकिन उसको नुकसान पहुंच सकता है। जो व्यक्ति आगे ही जा रहा है उसका फर्स्ट नंबर ही है, और कितनी भी ग्लानी कर दो, हाँ जरा थोड़ा मालूम पड़ेगा तो दर्द तो होगा, क्योंकि वो आलोचना ऐसी चीजें है ना, चुभती है, दर्द तो होता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति है ना, तो क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया है तो बाबा ने ज्ञान के आधार से अपने को, लेकिन फिर भी वो चुपता बहुत है। 100 लोग प्यार करें ना वो नहीं, लेकिन एक व्यक्ति नफरत करता है, एक व्यक्ति थोड़ी आलोचना करता है तो बहुत चुपता है। तो इसलिए और ये क्या है कि जो व्यक्ति को कोई पुरुषार्थ नहीं है या तो कोई काम नहीं है तो व्यक्ति को क्या है, कहते हैं खाली मन क्या शैतान का काम करता है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, यहाँ से वहां से इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी करता है और सबको पहुंचा, कई बार हमको मालूम नहीं पड़ता यहाँ क्या होता है, मालूम नहीं पड़ता, हमको बाहर से फोन आता है, अरे आपका मधुबन में ऐसा होता है, सांदीवन में ऐसा होता है, हमको तो पता नहीं है, आप लोग को कैसे पता, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी छोटी सी बात होती है ना, मैंने बोला ना एक छोटी सी बात 100 गुनी होकर 1000 गुनी होकर के वापिस आती है। इसलिए हर एक बात जो भी कोई कहता है उसको हमें पहले जांचना चाहिए कि राइट है या नहीं है, या हमें इसको ऐसे बोलने से हमारे जीवन में, उनके जीवन में नुकसान हो या ना, लेकिन हमारे जीवन में कितना नुकसान होगा, क्योंकि हम अपने जो नुकसान हुआ है, हमारा हिसाब किताब के कारण किसी से हमारा कुछ हुआ है, और वो हमें बातें फैला करके ग्रुप बना करके, तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पाप करते हैं हम। जैसे आज का टॉपिक तो हमारा बहुत ही ये है और हम सबको प्रभाव में लाता ही है, लाता ही नहीं लाता है, हम सारे दिन में करते नहीं करते, कुछ न कुछ करते तो है ही, हाँ परसेंटेज है, परसेंटेज होती है ना कोई तो, लेकिन कोई कुछ बोलता है तो सुनना तो पड़ता है, हाँ सुनते हैं तो हम भी उसके इसके दायरे में आ जाते हैं। जैसे यहाँ कोई ऐसे सा कोई कुछ होता है तो जो करने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, उसको पुलिस पकड़ के ले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात, तो जब जिसने मतलब कि जिसके साथ झगड़ा किया था वो तो भाग गए, बाकी के लोग देखने के लिए गए, वहाँ देखने के लिए 50 लोग गए, उसमें से 10 भाग गए, 40 को पुलिस पकड़ के ले गई कि आपने सब कुछ किया है। तो यहाँ भी ऐसा है कि जब भी कोई ऐसा करता है हम उसके सिर्फ हाँ जी करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये भी हमारे गुना बन जाता है। हमको लगता है कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारा गुना ऐसा बनता है, फिर हमारे को आदत पड़ जाती है सुनने की। कहीं भी आपने देखा है कि कहीं है ना हीरे की दुकान में जो होती है, चांद सोने चांदी की दुकान में लोग कम होते हैं, लेकिन दूसरी दूसरी दुकानों में बहुत होते हैं। यहाँ भी है ना, ऑफिसों में भी आप देखो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं टेबल पर, तो वो कोई अच्छी बातें नहीं होती, किसी न किसी की खिलानी होती है, उसमें बहुत इंटरेस्ट है। कोई अगर अच्छी रीति से मुरली पड़ता है तो कोई इसके पास जल्दी आता नहीं है, मुरली पड़ता है या कोई चिंतन करता है या कुछ स्वमान का अभ्यास करता है, जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि वो मतलब कि समझता है ये सब थोड़ा कठिन है। और वो तो वो परचिंतन में इसलिए रस है कि द्वापर से चलाया है ना रस, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है, आदत को तोड़ना मुश्किल है ना, वो चक्कर ऐसा है, मेहनत बहुत। नहीं नहीं मजा आता है, शक्ति मिलती ही नहीं है ना, लेकिन वो क्या है हल्कापन लगता है उनको, इसलिए हल्कापन लगता है, जैसे किसी को किसी के साथ नहीं बनी है ना, तो दो चार इकट्ठा होगा तो क्या होता है कि कोई टीचर है समझो, उसकी चार उसके साथ चार सेवाधारी है, एक एक को सभी को डांट लिया समझो, चार ही बैठ करके उसकी गिलानी करेंगे, तो भी सुख मिलता है कि देखो कोई एकता, हाँ एकता हो जाती है। अगर एक के साथ किसी को नुकसान हुआ है तो चार पांच दस लोग इकट्ठा होकर के सारे दिन उसी बातें करेंगे, तो हाँ बढ़ जाता है ना थोड़ा दर्द। तो अभी जैसे कहते हैं अभी सब बताएंगे, फायदा तो बताया ना कि ये हल्केपन लगता है, आपने जो अभी टाइटनेस बोला उसमें आपने एक हल्कापन नहीं दिया, ये हल्कापन है एकदम। अभी हम देखते हैं कि कौन सी वो जो कीर्तन होता है और ये कीर्तन होता है, इसमें भिन्नता क्या है। उस जो कीर्तन होते हैं उसमें प्रभु या भगवान को याद करते हैं, और इस कीर्तन में किसको याद करते हैं, किस किस को याद करते हैं? नहीं देहधारी को, लेकिन सब देहधारी को याद नहीं करते, जैसे प्यारे होता है उसको हम इस प्रकार से याद नहीं करते, लेकिन जिससे हमारी थोड़ी जेलेसी है, ईर्ष्या होती, हाँ हमारा कभी कभी उसके साथ कुछ हुआ है तो 10 लोग इकट्ठा होंगे, उसके 5 साल पहले कुछ हुआ है ना, लेकिन वो इकट्ठा हो तो तुरंत 5 साल की बात उसको एकदम याद आएगी। तो इसी रीति से हम देहधारी को, सभी देहधारियों को नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम याद करते सुख मिलता है, ये भी ऐसा कहता है, वो मैं भी ऐसा, ठीक है ऐसा ही है, बहुत सुख मिलता है। तो इस कीर्तन में प्रभु का भगवान को याद करते हैं, और इस कीर्तन में देहधारी जिससे हमारी जेलेसी है, जिससे हमारे कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं समझते भी इसका हिसाब अलग है, मेरा हिसाब अलग है, हम क्यों इन्वॉल्व हो जाएंगे किसके साथ। उस कीर्तन में प्रभु की महिमा गाते हैं, गुणगान गाते हैं, और इस कीर्तन में सारे ते सारे, आपको एक घंटा भी कम पड़ेगा अगर कोई काम नहीं है तो, फिक्स भी होती है कि बाद में मिलेंगे अभी, और जब भी मिलेंगे तो याद आएगी, अरे वो बात थी क्या थी, तो देहधारी को याद करते हैं। और इसकी ग्लानी निंदा, और ग्लानी निंदा क्यों करते हैं वो भी, कि उसको ऐसा रस मिलता है, क्या रस मिलता है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन उसको अंदर से ऐसा लगता है कि ये मेरा सपोर्टर है, मुझे जरूर। और हम ग्लानी भी करते हैं किसकी पता है, हम किसी को चापलूसी करने के लिए भी उसकी ग्लानी करें, हमको पता है कि इस व्यक्ति को उसके साथ नहीं बनती है, उसकी बहुत हम ग्लानी करेंगे, तो वो व्यक्ति को, ये व्यक्ति भी बहुत अच्छी तरह से सुनती है, क्योंकि उसको उसके साथ नहीं बनती है, और उसकी हम बातें करेंगे तो उसको तो और भी मसाला मिल जाएगा, इसलिए वो क्या करेंगे, वो शांत सुनेंगे, उसको भी बहुत सुख मिलता है, फिर उनको कुछ कुछ मदद भी करते और भी बातें निकालते हैं अपने फायदे के लिए। उस कीर्तन में पुण्य जमा होता है, और उस कीर्तन में क्या होता है, और बोझ कितना पड़ता है, पहले तो खुशी होती है, लेकिन जब एकांत में बैठेंगे तो शांति नहीं मिलेगी इसको, अशांति का अनुभव होगा, उसको लगेगा अरे रे बोझ बोझ, बहुत बोझ का अनुभव होगा। हाँ फिर बहुत निंदा की आपने, एक घंटा निंदा की, अब 2 बजे उठो, दो बजे उठने से भी कोई फायदा नहीं, क्या सारे दिन उसने वही वही बात की। वो व्यक्ति सुबह में उठेगी तो उसको वही बात याद आएगी। उस कीर्तन में विशेष तौर सुबह शाम किया जाता है, तो जो व्यक्ति मिले ना उसके साथ चालू हो जाते हैं। तो वो एक कीर्तन के ऐसा होता है, कभी भी रात को 10 बजे भी कोई मिले ना, बैठ गए उनके साथ। लेकिन कोई के 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद पहले योग चलता था, चार लोग बैठते थे योग करने के लिए, बहुत नहीं बैठते थे। लेकिन कुछ बताते थे ना, फिल्म बताया या तो कोई वीडियो बताया, तो सारे क्लास हाजिर। और क्लास होता है ना उसमें 25% ही होते हैं, बाकी कहते हैं हम बहुत थक गए हैं, हमको नहीं। अभी ये जो गरबा का प्रोग्राम होता है उसमें आपने देखा ना, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तभी उनको ऐसा नहीं लगा कि हम थक गए हैं, ये हुआ है, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं तो हमेशा आती हूँ इसमें। मेरा नाम देते हैं तो मेरे को आना पड़ता है ना, उसका इंसल्ट ना हो जाए। उस कीर्तन को प्रभु या इष्ट के सामने बैठकर किया जाता है। और इस कीर्तन बाबा कहते हैं चलते फिरते योग याद करो, लेकिन ये बराबर है इसमें, चलते फिरते उठते बैठते किसी के भी साथ। और वो व्यक्ति है ना उसकी गैरहाजिरी में, उसमें हाजिर होता है ना प्रभु के सामने बैठ करके, और ये उसकी बिल्कुल इसको हाजिरी नहीं होती। उसके जो चार बैठे हैं ना उसमें जो नहीं है ना उसकी ग्लानी होंगी, वो तो कटाक्ष होता है ना, उसे टॉन्टिंग होता है। बाकी चार लोग होंगे ना, चारे चार बहुत दोस्त है, लेकिन इसमें एक बिल्कुल नहीं आया है ना, तो तीनों ही मिल करके उसकी भी करेंगे। हाँ, आगे दोस्त पीछे। ठहरो ना भी। कीर्तन जो होकर गए उनका होता है ना, कीर्तन जो गए उनका मूर्तियां बना बना के करते हैं। और ये जिंदा लोगों का, और कैसे होता है, क्योंकि हमारी आंखें होती है ना देखती है, और कान सुनता है, तो सारा जाता है ना अंदर, फिर कुछ अनुभव होता है या किसी से कुछ होता है, तो फिर क्या है यहां से बोलना शुरू होता है, वर्णन शुरू होता है। तो ये इससे हम क्या करते हैं, प्रचिंतन करने का काम मुख करता है, और प्रदर्शन करने का काम आंखें करती है, सुनने का काम ही करता है। इसलिए बाबा ने एक स्लोगन दिया है, कौन सा स्लोगन दिया, हियर नो इविल है ना। जितना बड़ा महात्मा उतना बड़ा कीर्तन। यहां पर भी जितना बड़ा व्यक्ति होता है ना उसका भी बहुत बड़ी बातें बताते हैं। किसी ने उसको अगर मान सम्मान दे दिया, और मान सम्मान दे दिया ना, स्टेज पर बिठा दिया, या तो उसने बहुत उसकी प्रशंसा कर दी, उसका तुरंत ही वहां चालू हो जाएगा परचिंतन। उस कीर्तन में थक जाते हैं, एक घंटा बैठे, दो घंटे बैठे, तीन घंटे बैठे। और आपने कथा कीर्तन में देखा है, बहुत सारी कथाएं होती है, उसमें अपना टिफिन लेके आते हैं, आगे वो जो भी सुनाए, यहां तो अपनी बातें ही सुनते हैं, सुनाते हैं। और कीर्तन पूरा हो जाता है तभी कहते क्या सुना, तो उसकी स्टोरी जो होती वो थोड़ी थोड़ी याद रहती है, बाकी तो उसकी बात। हाँ, तो ये कीर्तन में तो कभी थकते ही नहीं है, जितना भी कीर्तन करने आए ना बस आवकार वेलकम करते हैं। फिर समानता क्या है इसमें, जिसका कीर्तन करते हैं वही दिल और दिमाग में याद रहता है। बाबा आपको हम जब याद करेंगे तो दिल दिमाग में याद रहता है, लेकिन यहाँ जिसका परचिंतन करते हैं वो क्या होता है, वो भी दिल दिमाग में याद रहता है, और बाबा उस समय भूल जाते हैं। और देहदारी बहुत याद रहता है, उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे उस दिन ऐसा किया था, तो बाबा जब योग में भी बैठते हैं तो भी वो योग नहीं लगता है। लेकिन उठते बैठते केवल वही दिखता है, जो कीर्तन करता है, जो बाबा की याद में रहता है उसको वो दिखाई देता है, लेकिन जो वो कीर्तन करता है उसको वो याद रहता है। समानता है ना, जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा आनंद है ना। इसमें भी जितने लोग इन्वॉल्व हो जाए ना तो हमको सहयोगी लगते हैं, ये भी है, इसको भी अच्छा है। हर कोई बढ़ कर हिस्सा लेता है इसमें भी उस जब भी संगठन होता है, सत्संग होता है, बाबा मिलन होता है, तो संगठन होता है, उसमें भी लोग इकट्ठे होते हैं, और उसमें भी कोई चार बातें कर रहा है, वहां कुछ हो रहा है, तो देखे जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं। कीर्तन पूरा होने के बाद क्या होता है, वो कीर्तन के बाद और एक कीर्तन के बाद एक प्रकार की खुशी होती है कि अच्छा मुझे इतना सहयोगी मिला, और फिर उस समय तो संतुष्टता दिखाती है, लेकिन उसके बाद फिर जब घर में जाते हैं तभी उसका मन बोझिल बन जाता है, खुशी गुम हो जाती है। नुकसान क्या है उसका, इससे हमारा सुख जो बहुत परचिंतन करते हैं उसका सुख खत्म हो जाता है, और वो सुख हमारा क्यों चला गया, शांति क्यों चला जाए हमें मालूम नहीं पड़ता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि आज सारे दिन में हमने ऐसा तो काम नहीं किया, चार घंटा तो ये सेवा की, दो घंटा अमृत वेले दो बजे उठ उठ के ये योग किया, लेकिन बाकी का समय में रोटी बनाते बनाते सब्जी बनाते बनाते हमने देखा ये चार रोटियां बनाती है, मैंने तो 50 बनाई, ये देखो यहाँ घूमती रहती है, सेवा करने आई है, हॉस्पिटल में जाती है, इधर जाती उधर जाती है, सेवा करते करते योग करते करते इनका तो क्या है कि सुख खत्म हो जाता है। फिर मन में क्या भाव पैदा होता है, हमने बहुत सेवा की, लोगों ने कम की, तो नफरत आती है इसके प्रति, और फिर उससे थोड़ी थोड़ी बातों में शत्रुता भी हो जाती, कुछ कुछ सहयोग मांगेंगे हम बोलेंगे लोगों को करेंगे उसको नहीं करेंगे सहयोग। फिर तीसरा नुकसान क्या है, बहुत कोई परचिंतन करता है लोग कहते उसे दूर रहो, हमसे लोग हमसे नाराज भी रहते क्योंकि हमने सुना उसने हमारे लिए कुछ बात बताई है हमारे तक पहुंच गई समझो, तो हम उसको बोलेंगे नहीं लेकिन नाराज रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन व्यक्ति को पता चल ही जाता है कि ये मेरे पीछे क्या क्या करते हैं, तो वो नाराज रहते हैं। हाँ फिर है लोग दूर भागते हैं कि ये इसके पास बैठेंगे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ो उसको, इसलिए हम उनके साथ बात कर पसंद नहीं करते, टालते हैं उसको, दूर भागते हैं। फिर बहुत ही छवि भी खराब होने लगती है, छवि भी देखो बोलो ये तो इसके साथ बैठने में तो क्या है हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं बैठना है, और लोग क्या एक सर्टिफिकेट देते इसका काम तो यही है सारे दिन बस यही काम है, फिर क्यों करते हैं प्रदर्शन का कीर्तन, ये थोड़ा बताती हूँ खुद को बेहतर जताने के लिए कि मैं सबसे थोड़ा आगे हूँ, अच्छा हूँ, हम इनसे बहुत अच्छे थे, अच्छे श्रेष्ठ है। दूसरा है कि प्रदर्शन क्यों करते हैं या परचिंतन क्यों करते हैं, उसका कीर्तन क्यों करते हैं, संस्कार व आदत हो गई है, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं सकते, और ये दिखाने के लिए कि हमें सब पता है, कभी कभी कहते हैं ना व्हाट्सएप में जो मैसेज आता है सारे के सारे मैसेज हम पास कर देते फटाफट फटाफट, और नेगेटिव तो एकदम फटाफट करते हैं। फिर संग दोष के कारण, संग दोष मिलता है अच्छा संग मिलता है तो अच्छे संग में जाते हैं, लेकिन रोज रोज यही व्यक्ति हमको परचिंतन करती रहेगी तो हम उसमें फंस जाते हैं। फिर क्यों करते हैं, क्योंकि जिसको सफलता नहीं मिलती है ना असफल रहते हैं, तो वो क्या है थोड़ा रस इसमें ले लेते हैं, फिर किसी को किसी के प्रति बहुत ईर्ष्या होती, घृणा होती है, तो ईर्ष्या घृणा उसके सामने नहीं कर सकते, इसलिए बाहर बाजू में दूसरे लोगों से उसकी ईर्ष्यावश घृणावश बातें करती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परचिंतन में हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, स्वचिंतन कर अपनी इस बुराई को खत्म करना चाहिए कोशिश करने की, और स्व उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संगम का समय है। ओ बाबा ने बोला एक सेकंड गई तो कितना गया, यदि उसे दूसरों की बुराई नजर भी आए तो भी हमें उसे अनदेखा कर देना चाहिए, कोई हमको बताते ऐसे ऐसे करता है तो बाबा ने हमें बहुत सारी बातें बताई है जो हमें उसको पास कर देना है। लेकिन जिस व्यक्ति की बुराई है उसको हमें शुभ भावना देनी है कि भाई उसमें ठीक हो जाए, ऐसा व्यक्ति जब ऐसे लोगों की ग्लानी करते हैं परचिंतन करते हैं लोगों की बुराई बुराई करते हैं तो बाबा उसको मदद भी नहीं करता है, वो कहते हैं मैं तो इतने घंटे याद करता हूँ मुझे याद बाबा मदद नहीं करता, कैसे करेगा 22 घंटा तुम्हारा ये काम है आधा घंटा तुम बाबा को याद करते हैं तो भगवान कैसे याद मदद करेगा, तो गोया अपने खजाने को। अच्छा अभी मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति तो चाहिए, जो कर रहा है वो जो कर रहा है ना वो तो बहुत बड़ा ये है, लेकिन वो छूट नहीं सकता है। उसकी ये है ना, उसके ऊपर हम ताला नहीं लगा सकते। वो करेगा करेगा न करेगा, उसको वरदान है। बाबा ने बोला ना, बाबा ने बोला कि जो व्यक्ति पर चिंतन में फंस जाता है ना, बाबा कहता है अमृत वेले उठ करके मुझे याद करते हैं तो मैं थप्पा लगाता हूँ, याद करता ही रहे। और अगर हम सुबह में उठ करके वो बाबा बीज को याद करके किसी का परचिंतन की याद करते हैं किसी के, तो बाबा वहां भी थप्पा लगा देता है कि ले तुम भी स्टैंप। इसलिए वो फिर सारे दिन, क्योंकि उसने सुबह में उठ करके क्या किया, परचिंतन की बातें याद करी, तो बाबा को काम ही कि जो तुम करेगा उसे थप्पा लगा दूंगा, तो थप्पा लगाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि बाबा ने हमको एक बहुत बड़ी एक साधन दिया है, वो ड्रामा। क्योंकि ड्रामा ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में अगर ड्रामा नहीं होता ना तो आधे ब्राह्मण मर जाते। क्योंकि कहीं भी कुछ भी होता है तो बाबा ड्रामा को याद करता है और एक ढाल को हमारे सामने लाता है। तो ड्रामा हमारे सामने बहुत ही बड़ी बड़ा साधन है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि बाबा ने कहा है ड्रामा में सब जितने भी लोग हैं उसका एक्यूरेट पार्ट है, उसका बाबा खुद भी बदल नहीं सकता है, तो हम कैसे बदल सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा कैसा भी काम करता है, हम कितनी भी शुभ भावना रखेंगे, हम तो इस शुभ भावना हम उसके प्रति रखेंगे तो उसका कुछ भी हो जाए, हमारा उसका नुकसान हो या न, लेकिन हमारा तो फायदा ही होगा, हमारी अंदर की मन की आत्मा हमारी शुद्ध हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ड्रामा कैसा है, कल्याणकारी है। बाबा ने दो दिन पहले भी कहा, कोई कोई कुछ भी करता है तुम क्यों सोचते हो कोई ऐसा करता है वैसा करता है वो करता है, तुम बस उसको शुभ भावना दो, उसको वाइब्रेशन दो, ऐसा बाबा कहता है। तो ड्रामा में कोई कुछ भी कर रहा है उसका ड्रामा में पार्ट फिक्स ही है। लेकिन कोई डांस करता है स्टेज पर तो हमने देखा है, एक बहुत अच्छा डांस करते हैं, एक बिल्कुल अच्छा नहीं करते, लेकिन जो अच्छा करती है ना वो बराबर उसको देखती रहती है, तो हम देखते हैं कि इसका ड्रामा अच्छा नहीं, लेकिन जो ऐसे वैसे करते हैं उसका हमको अच्छा लगता है। तो इस ड्रामा में भी अगर हम दूसरे का पार्ट देखते रहते हैं तो हमारा पार्ट ठीक नहीं रहता है। इसलिए हमें किसको देखना है, स्व को देखने का। 2500 साल तक हम लोगों को देखा है, 2500 साल तक लोगों की बुराइयां देखा, सब कुछ देखा। अभी भगवान ने संगम का एक ही समय दिया है जो खुद को देखने का है। फिर है कि ड्रामा इतना कल्याणकारी है क्योंकि आने वाला समय में हमें ट्रेनिंग दे रहा है। चार ग्लानी करता है कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इतना उसके सावधान भी रहना है और हमें अपने को देखना भी है कि हमारे में अगर वो कोई कहता है वो है कि नहीं है, तो वो हमको एक टीचर बन करके, कल्याणकारी बन करके ड्रामा को सिखाता है। दूसरा है कि बाबा ने एक बार बोला था कि ड्रामा में हर एक का पार्ट एक्यूरेट है और निर्दोष है, किसी का कुछ भी नहीं है। अगर कोई कुछ भी करता है तो हम अगर उसको पर ध्यान देंगे तो मतलब कि ड्रामा में हर एक का पार्ट फिक्स है, निर्दोष है। तो उसका पार्ट तो फिक्स है, निर्दोष है, उसको समझो। लेकिन उसने हमारे प्रति जो भी किया है, तो हमें उसको बहुत ध्यान पे नहीं लेना चाहिए। अगर हम ध्यान पर रखेंगे तो हमारा अपना स्वउन्नति का काम नहीं होगा। और परचिंतन का कीर्तन बहुत लंबा चलता है, उससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट जाता है। और जितना पुरुषार्थ का समय है, आपने एक दो चार घंटा पुरुषार्थ किया, लेकिन आधे घंटे परचिंतन करो, आपको बराबर मालूम पड़ जाएगा कि कितना हमारा खत्म हो जाता है। फिर कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। कोई भी आपके पास परचिंतन करने आते हैं तो आप उसको है ना, ये व्यक्ति की पॉजिटिव बातें दो ही बताओगे ना उठ जाएगा। आप अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास कोई अगर आते हैं उसको किसी की बात करते हैं, हम उसकी दो चार बातें इसी विशेषताएं बताएंगे तो व्यक्ति वहां से उठ जाएगा कि मजा नहीं है इसके साथ बात करने की। हाँ वो तो ऐसे हम हाँ जी हाँ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। हाँ दोबारा नहीं आएंगे। वो ऐसे लोगों को ढूंढते जो इसको मतलब कि संग मिल जाए। दूसरा है कि जब ही ऐसा होता है तो हम साइड सीन समझ करके चले कि ये साइड बाबा ने हमको जो लक्ष्य दिया है उसके साइड सीन बहुत आएगी। अगर हम साइड सीन में फंस जाएंगे तो हमारी मंजिल बहुत दूर हो जाएगी। तो मंजिल को सामने रखना है, पुरुषार्थ करना है। और दूसरा कि हमको कोई कुछ भी मतलब कि कहता है या समझ तो हम उसको बाईपास कर दो। और फिर कोई कुछ करता है तो हम सिद्ध करने की कोशिश ना करें। प्रतिवाद अभी नहीं, आपने मुझे ऐसा कहा मैंने ऐसा नहीं किया है, प्रतिवाद करो ही नहीं तो क्या होगा। बेहस करने की जरूरत नहीं है। हम जो है वो हम जानते हैं, आप जिसको भी जो जानना है जाने, लेकिन हम जो कुछ भी है हम ही जानते हैं, तो हमको उससे बेहस करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं। उसके आगे हम क्या सिद्ध करेंगे जो हमेशा परचिंतन करता रहता है। इसलिए हमें वो उसे सावधान रहना चाहिए। ओम शांति।